बिहारी जाया। जाया गोपी जाना वल्लभ, जाया गिरिवराधारी, जाया गिरिवराधारी। जाया गोपी जाना वल्लभ, जाया गिरिवराधारी, जाया गिरिवराधारी। जाया गोपी जाना जया यशोदानंदाना, जया ब्रज जनरंजाना, जया जया यशोदानंदाना, जया ब्रज जनरंजाना, जया जया यमुना तीरवनचारी, जया कुंज बिहारी, जया जया यमुना तीरवनचारी, जया कुंज बिहारी, जया जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा वृंदावन चंद्र, राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा राधा वृंदावन चंद्र देव भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया गौर निताय भगवान की बालाजी देव भगवान की श्रील प्रभुपाद की। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति न इष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक नंबर 27। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समाह शाश्वती शाश्वतीर नुभूर्यार्तिम प्रमदासम तुषितः। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समाह शाश्वतीरनुभूयान्ति प्रमदासंग दूषितः। अनंतपारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयान्ति प्रमदासंग दूषितः। माताजी अनंत पारे तमसि मग्ना नष्ट स्मृति समः अनंत पारे अपार तमसि संसार के अंधकार में मग्नः डूबा हुआ नष्ट स्मृति ही समस्त बुद्धि से रहित समाह अनेक वर्षों तक शाश्वत ही निरंतर अनुभव अनुभव करके आर्तिम तीनों ताप प्रमदा स्त्री के संग संगति से दूषिता मलिन। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीवरूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेकानेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की यह भौतिक संसार का वर्णन है। इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर नष्ट स्मृति ही श्री के प्रति आसक्त रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक वह इस संसार के तीनों तापों को सदैव सहता रहता है। मानव सभ्यता को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य विस्मृत जीवात्मा को प्रबोधित करना और उसे मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना है। इस प्रकार जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतरण से बच सकता है। जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पड़ी भवारणव जले तरी बार ना देखी उपाय, ये विषय हला हले दिवा निशी हिया ज्वले मन कभू सुख नहीं पाए। मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया हूँ। मैं इस विषतुल्य अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा। हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह तथाकथित सुख उस भोजन के तुल्य है जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुंचाता है। मुझे अहर्निश जलन का अनुभव होता रहता है और मेरे मन को संतोष नहीं मिल पाता। यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। लोग चिंता को कम करने के अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु वे सही पथ प्रदर्शन न पाकर मद्यमान तथा यौनाचार के द्वारा भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते रहते हैं। वे मूर्ख यह नहीं जान पाते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना कठिन है। प्रमदा संग दूषिता शब्द बताते हैं कि अन्य कल्मश को यदि छोड़ दे तो केवल श्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफी है। इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है। जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था गृहस्थ की, तीसरी वानप्रस्थ की और चौथी संन्यास की है। ये सारी अवस्थाएं इसलिए बनाई गई है जिससे मनुष्य अपने को श्री संगति से अपने को अलग कर सके। ओम ज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम एनाम तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा। तो आज हम पुरंजन की साख्यान में आगे चर्चा करते हुए इस श्लोक पे पहुंचे हैं जहां पे उसको अभी खींचा जा रहा है अपने शरीर से, और जाते टाइम कल के वर्ष में देखा है कि कैसे अलग अलग प्राणी उसको चुभ रहे हैं, और आज बताया गया है कि उसकी जो आसक्ति है अपने पत्नी और बाकी फैमिली मेंबर्स के प्रति, उसके कारण जीव कैसे अपने भौतिक जीवन को और भौतिक जगत में रहने वाले जो अवधि है उसको हमेशा ही बढ़ाता रहता है। तो इंद्रिय तृप्ति एक ऐसा विषय है जो जीव को हमेशा आकर्षित करता रहता है इस दुनिया के अलग अलग वस्तुओं के प्रति। लेकिन कृष्ण भावना जो है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इसीलिए स्टार्ट की है कि जिस कारण जीव हमेशा इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत प्रति आकर्षित हो। जो बैक टू गॉड हमारा फेमस मैगजीन है उसका अगर कवर पेज देखेंगे वहां पे एक पिक्चर हमेशा आती है ऊपर टॉप कॉर्नर में, क्या आते हैं वहां पे, एक कोने में चैतन्य महाप्रभु है और दूसरे कोने में नीचे बद्ध जीव है, और चैतन्य महाप्रभु उन सबको आकर्षित करते हैं और नीचे प्रभुपाद जी का फोटो है, बैक टू गॉड ऐसा लिखा गया। तो एक वही पे ऊपर लिखा रहता है, उसका बंगाली वर्स ऐसा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया अधिकार। और पिक्चर में ऐसा दिखा है चैतन्य महापुरुष के पीछे से सूर्य की बहुत सारी किरणें आ रही है। तो पहले ही लाइन अपने तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, यह भौतिक संसार का वर्णन है, इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य श्री कृष्ण के दास के रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर नष्ट स्मृति वो श्री के प्रति आसक्त होता है। नष्ट स्मृति यानी वो कृष्ण के जो प्रति अपनी स्मृति है उसको जब भूल जाता है तब माया उसको पकड़ लेती है। कृष्ण सूर्य सम, जहां कृष्ण है वहां पे सूर्य सम, वहां पे बहुत सारा प्रकाश है, वहां पे अंधकार नहीं है, माया अंधकार के समान है। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण को भूलकर माया की तरफ देखता है तो पूरा अंधकार ही अंधकार नजर में आता है, पूरा माया का अधिकार होता है। उसी प्रकार जयदत्त महाराज ने एक पुस्तक अभी रिसेंटली लिखा था 2016 में, उसको अमेरिका के एक म्युनिसिपालिटी की तरफ से जो पब्लिशर्स का ग्रुप होता है उसको अवार्ड मिला है, द बेस्ट बुक इन द कैटेगरी ऑफ रिलीजन। उस पुस्तक का नाम है वैनिटी कर्म। वहाँ पे उन्होंने भगवद्गीता के कर्म का जो फिलोसॉफी है और पाश्चात्य देशों में ऐसा एक फिलोसॉफिकल बुक है, दोनों के कंपेरेटिव स्टडी करके वो पुस्तक पब्लिश किया है वैनिटी कर्म नाम से। तो वहाँ पे भी वो बोलते हैं कि जीव कैसे जब इस भौतिक जगत में आनंद लेने का प्रयास करता है तो उसको सिर्फ दुखों का ही सामना करना पड़ता है। तो ये जो कंसेप्ट सिर्फ वैदिक शास्त्रों में नहीं है, महाराज बोलते हैं कि कैसे अलग अलग संतों ने आके यही हमें बोला गया है कि इस जगत में अगर हम आनंद लेने का या सुख भोगने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ दुख ही हाथ में आ जाता है, क्योंकि कृष्ण को छोड़ के नष्ट स्मृति, कृष्ण को छोड़ के जो भी आनंद यहाँ पे मिलने की संभावना है वो है इंद्रिय तृप्ति की तरफ से, और जैसे हम इंद्रिय तृप्ति में घुस जाएंगे तो उसके कर्म फल तो मिलने वाले ही है। तो और एक फेमस वर्स है, कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे निकट असे माया जैसे तारे झापटिया धरे। तो माया ऐसी एक झापट लगा देती है जीव को और उसको पकड़ लेती है, कास्ट इन टू द मटेरियल एग्जिस्टेंस फॉर इटर्निटी, ऐसा ही हो जाता है उस जीव का। तो इसलिए जीव ने हमेशा इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण भक्ति ये दोनों साथ में कभी जा नहीं सकते, ये समझने की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए हमें
हमने कृष्ण आंदोलन की शुरुआत किया है प्रभुपाद जी प्रोपोर्ट में, अभी अभी हमने पढ़ा लिखते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन दे गो इल टूगेदर। लेकिन ये जो माया है वो भी कृष्ण ने तो स्टार्ट किया है, तो माया से बचकर जाना बहुत मुश्किल है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बीच पे चल रहे थे, तो बहुत ही फेमस पास्ट टाइम है जहाँ पे वो हट्टे कट्टे भक्त उनको बोलते इस मेंढक को पकड़ के लाओ जो बीच के अंदर बाजू में ही बैठा था। जैसे वो पकड़ने के लिए जाते हैं तो मेंढक समुन्दर के अंदर कूदी मारता है, वापस चले आते हैं तो वापस मेंढक बाहर आ जाता है। तो प्रभुपाद जी पकड़ो, वापस चले जाता है तो वापस वो मेंढक समुन्दर के अंदर पानी के अंदर कूदी मार देता है। तीन चार बार ऐसा होने के बाद ये ब्रह्मानंद रू आके बोलते हैं कि प्रभुपाद ये पकड़ना मुश्किल है, ये मेंढक हमेशा पानी के अंदर ही कूदी मार रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मानंद इतना बड़ा है और मेंढक इतना छोटा है, लेकिन फिर भी वो मेंढक को पकड़ नहीं पा रहा है, क्यों? तो डिस्कशन चालू होता है मॉर्निंग वॉक में। प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक बहुत रियल लाइफ केसेस लेके उससे हमें सीख देते हैं। तो बोले कि मेंढक बहुत छोटा है लेकिन उसने बड़ों का आश्रय लिया है। बड़ी चीज क्या है यहाँ पे? समुन्द्र। जब छोटा व्यक्ति बड़ों का आश्रय लेता है तो ब्रह्मानंद प्रभु जैसे बड़े व्यक्ति भी उसको कुछ नहीं कर पाते ना? तो ये बहुत बड़ी सीख है कि जीव बहुत छोटा है, माया तो बहुत पावरफुल है, लेकिन जब जीव किसी बड़े वैष्णव का या भगवान का शरण लेता है तो माया उसको पकड़ नहीं पाएगी। अगर लेकिन शरण नहीं लिया तो तुरंत झपटिया धरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी हमें हमारे जीवन में उतरना है। जैसे हमने गांव में बहुत बार देखा है कि कुत्ते के पीछे अगर बाकी कुत्ते लगते हैं ना या कोई आदमी लगता है तो वो भागा भागा आता है, लेकिन अपने गले में आने के बाद तुरंत मुड़ लेता है, क्योंकि वो उसको लगता है यह अभी मेरा आश्रय स्थान है, यहाँ पे मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता है। वैसे जब हम बाहर जाते हैं कुछ काम के लिए, ऑफिस में जाते हैं, वहां पे अलग अलग चीज हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन जैसे हम घर पे आते हैं, मंदिर में आते हैं, वैष्णव के संघ में आते हैं, तो एकदम ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी आश्रय मुझे मिल रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अथर्व प्रोग्राम जो जयदेव प्रभु के घर पे होता था सोमवार मंगलवार के दिन, मंगलवार एवरी ट्यूजडे इवनिंग, तो ऑफिस में काम करने के बाद उस समय में ऐसा लगता था अभी मैं शाम को इतना भोसले नगर में कौन जाएगा, वापस बेस में जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, लेकिन कैसे तो करके वहां पे पहुंच जाते थे। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ऐसा लगता था कि वाह अच्छा हो मैं आ गया, इतना अच्छा प्रोग्राम मिस नहीं किया, क्योंकि जो वहाँ पे आश्रय मिलता था सुन के भगवद्गीता के बारे में, जो हफ्ता भर का जो भी हमने यहाँ वहाँ पे ऑफिस के टेंशंस, काम, बाकी सब यहाँ वहाँ की चीज़ें, मित्रों के मतलब ऑफिस के कलीग से सुनने वाली जो भी चीज़ें रहती थी, वो उसके कारण मन एकदम ऐसा बैटरी डाउन हो जाता था। लेकिन जैसे ही एक इवनिंग प्रोग्राम में हम जाते थे और जो बैटरी चार्ज होता था, एंड ऑफ द प्रोग्राम लगता था कि अच्छा हुआ आ गया, आई वुड हैव मिस्ड सो मच। तो जैसे हमें आश्रय की बात करते हैं ना, तो आश्रय यही है कि वैष्णव संघ में आना, कृष्ण कथा के बारे में सुनना। लेकिन अगर जीव ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिए क्या सामने रखा है वो पुरंजन की कथा में हम सुनते हैं कि पुरंजन को अभी निकाला जाएगा और ही वुड बी कास्ट इन टू डिफरेंट योनी। उसको अभी एक स्त्री का जन्म मिलने वाला है, स्त्री के जन्म के अंत में वापस हम आगे पढ़ेंगे कि वो अपने पति के बारे में सोचते सोचते मर जाएगी, तो वापस पति का यू नो उसको जन्म मिलने वाला है। तो ऐसा ये जीवन मृत्यु का चक्र तो चल नहीं रहने वाला है। ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स का जो वर्णन आता है भागवतम के 5वें स्कंद में, वो क्यों आता है? बहुत किचकट है, क्लिष्ट है समझने के लिए, बहुत बार भक्त लोग उसको स्किप कर देते हैं, इतना आसान नहीं है समझना। लेकिन इतना समझ में आता है वहां पे कि ये मेरे बुद्धि के परे है, और अगर मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करूंगा तो इस 14 लोकों में ऊपर नीचे ही मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। जैसे कि एक भक्त बोल रहे थे, टूरिज्म इंडस्ट्री जो होता है दुनिया में, वो क्या करते हैं कि जैसे आप बॉम्बे एयरपोर्ट पर जाओगे वहां पे लिखा रहता है फ्लाई टू न्यूयॉर्क, फ्लाई टू लंदन, न्यूयॉर्क जाओगे तो वहां पे लिखता है फ्लाई टू मुंबई, तो वहां पे कुछ तो एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फ्लाई टू मुंबई, फ्लाई टू वाराणसी, और भारत के लोगों को बोलते हैं आप अमेरिका जाओ, वहां के जीव को बोलते हैं इधर आ जाओ, यही टूरिज्म है। तो ये टूरिज्म भगवद्गीता में ऑलरेडी लिखा गया है कि आ ब्रह्मा भुवन लोका, इस जीव में इस योनि में इधर जाओ, उस योनि में उधर जाओ, घूमते रह जाओ। तो जीव को सिर्फ यहां वहां घूमने में जो अनुभव आ रहा है उससे अगर कुछ सीख नहीं पाएगा तो लोग अपना पैसा कमा लेते उससे, उसको सिर्फ घुमाते रहते हैं। अंडमान जाओ, नेपाल जाओ, यूरोप जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, वहां के लोग बोलेंगे यहाँ पे आ जाओ, पूरा पैकेज करके देते हैं। और इंद्र तृप्ति में ऐसे जब लगे रहते हैं तब उसको सिर्फ फल भी भोगना पड़ता है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखा था, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। तो प्रभुपाद जी ने एक बार एक ये पुस्तक एक व्यक्ति को दिया, बोला तुम्हें इतना रुचि है चांद्रयान में, मून लैंडिंग में, वो टाइम पे चल रहा था, तो व्हाई डोंट यू स्टडी दिस बुक, ये पुस्तक पढ़िए, आपको अन्य लोगों की बहुत आसानी से यात्रा कर पाओगे। तो बोले क्या लिखा है इस पुस्तक में, आप ये पुस्तक पढ़ के जो सबसे ऊंचा लोक है गोलोक, गोलोक धाम में आप जा सकते हो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, क्या मैं वापस झांसी आ सकता हूँ? बोलो प्रभुपाद, वापस क्यों आना है, गोलोक जाने के बाद यद गत्वान निवर्तन थे, वापस नहीं आना है। बोलो फिर मुझे नहीं जाना है, मुझे वापस झांसी में आना है, घूम के फिर के वापस झांसी में आना है। ये अवस्था है बद्ध जीवों की, उनको पता ही नहीं है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो इस जंजाल में जब फंस जाता है ना आदमी, तब वो अपना इंटेलिजेंस खो बैठता है। जब नष्ट स्मृति जो शब्द लिखा है वो इसी का प्रतीक है कि जब कृष्ण को भूल जाता है तो अपने जीवन का पर्पज खो जाता है, सिर्फ इंद्र तृप्ति के विषय में लगा रहता है। फिर ऐसे जब हम माया के जंजाल में फंस जाते हैं तो फिर आगे प्रगति करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो मन की एक बार तुलना किया, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे लिख रहे कि अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, कितने जन्मों के कर्म फलों के कारण मैं इस भव सागर में सिर्फ पड़े रहा हूं, ये बहुत बड़ा ओशन है और इसको मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कुछ पार कर पाऊंगा। ये विषय हला हले दिवा निशी हिया जोले, दिया निशी मतलब दिन और रात क्या हो रहा है। इतना अच्छा इंद्र तृप्ति का विषय सामने मेरे खड़ा है, जैसे कि कोई अच्छा खाना हो लेकिन वो इतना गर्म है, इतना गर्म है, मैं जैसे चख लेता हूँ मेरे पूरे जीभ जल जाती है, फिर उसका स्वाद क्या मिलेगा। जीभ जल गई तो हमें सबको अनुभव है, गर्म दूध या कुछ भी गर्म चीज खा लेते, गर्म सूप, तो उसका स्वाद तो ले ही नहीं पाते लेकिन जीभ जल जाती है। उसके कारण क्या होता है, अगले तीन चार दिन कुछ भी स्वाद नहीं ले पाते, कितना भी अच्छा खाना होने के बावजूद भी। वही अवस्था भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ बोल रहे, दिया निशी हिया ज्वले मन कभू सुख नहीं पाए। गौणिता भगवान की, तो मन कभू सुख नहीं पाए, मन को कभी सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे हम कुछ भी इंद्र तृप्ति करने का प्रयास करते हैं उससे आनंद मिलने से ज्यादा दुख मिलता है, जीभ जल जाती है, जैसे ही जल जाती है आगे इंद्रिय भोग भी ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया जाता है, जैसे कि हम अगर गाय के पास जाते हैं, बहुत बार हम यहाँ वहाँ गौशाला में जाते हैं, अच्छा लगता है कि हम भक्त है तो कृष्ण गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को ऐसे गले के नीचे जाके ना ऐसा उसको प्यार करते रहते हैं, उसको थोड़ा खाना खिलाते हैं, कुछ चारा वगैरह, तो गाय को भी बहुत मजा आती है। और बीच में अगर हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे ना, बीच में ऐसे लपक जाती है, जैसे लपक जाओ उसका मुंह थोड़ा ही हिलता रहता है एंगल में, लेकिन सिंह ऐसे बड़े होते हैं ना, वो बहुत डिस्टेंस में ऐसे घूम जाते हैं, सडनली किसी को लग सकता है, अगर सावध नहीं रहेंगे ना तो गाय ऐसे तुरंत मार देती है। गाय को ये नहीं लगता है कि मैं अभी मार रही हूँ, वो बहुत इनोसेंट है, उसको शायद आनंद में ऐसा करती रहेगी, बहुत बढ़िया, लेकिन वो सामने वालों को लग जाता है। वैसे ऋषभदेव बोल रहे हैं कि मन जो है ना, हम मन के साथ जब काम करते ना दोनों का अच्छा चल रहा है, सडनली मन के अंदर कुछ ऐसा इच्छा आ जाता है, वो ऐसा लपक जाता है, उसके कारण जोर से लगता है जीव को, हो सकता है कि 7-8 दिन उसको अस्पताल में जाने पड़े, अस्पताल, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा फ्रेंड है, मैं कितने अच्छी तरह से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन एक लपक अगर उसने मन ने ले लिया तो गाय की तरह हमें वो घायल कर देता है। तो ऋषभदेव ऐसा वहां पे उदाहरण दे रहे हैं कि हमेशा मन से ना बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। अभी वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, लेकिन किस मोमेंट पे वो कोऑर्डिनेशन भूल जाएगा या स्लोली स्लोली वो भूल जाएगा, हम आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे अगर स्लोली स्लोली भूल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता कि हम इस दिशा में जाने वाले थे लेकिन अलग ही दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी एक बार बोल रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन हमेशा रास्ते पे जाके करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, भक्त लोग नेदरलैंड में कहाँ पे, तो हरिनाम संकीर्तन शाम के समय में, देर रात के समय, वहां पे कैसा रहता है, दिन बहुत लंबा रहता है, 6 महीना दिन 6 महीना रात, ऐसा आपने सुना रहेगा। तो वहां पे अलग जियोग्राफिकल कंडीशन होने के कारण कभी एक मौसम में दिन बहुत लंबा रहता है, कभी रात बहुत लंबी रहती है। तो एक दिन शाम के समय, मतलब घड़ी के समय शाम था, लेकिन वैसे बहुत रात हो चुकी थी, अंधेरा था। वहां पे एक कपल रहते थे, उस कपल में जो वाइफ रहती थी उसका एक कुत्ता था, बहुत प्यारा था। एंड शी वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय तत्वज्ञान में वो रुचि रखती थी। तो उनको जेडी कृष्णमूर्ति नाम के तत्ववेत्ता बहुत अच्छे लगते थे, उन्होंने कुत्ते का नाम कृष्णमूर्ति रखा था और हमेशा कृष्णमूर्ति नाम से वो कुत्ते को बुलाती थी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म चाहिए करके वो कृष्णा करके बुलाते थे, कृष्णा कृष्णा लाइक दैट। एक दिन क्या हुआ, वो कुत्ता घर से चला गया, तो उसने अपने हस्बैंड को ऑर्डर दिया कि कुत्ते को ढूंढ के लाओ। तो रस्ते पे आके चिल्ला रहा है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, रस्ते पे जा रहा है ऐसा, कृष्णा कृष्णा बोल, सामने से हरिनाम संकीर्तन पार्टी आ रही थी। बोला इतने रात को इतना प्रेमी भक्त तो कभी देखा नहीं हमने, जो कृष्णा को ढूंढ रहा है, कृष्णा 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 करके। बोला क्या कर रहे हो, बोला कृष्णा को ढूंढ रहा हो, रियली हमारे पास कृष्णा है, बोला रियली चलो हमारे साथ, उसको मंदिर लेके आए। बोला किधर कृष्णा है, उन्होंने देखा कृष्णा क्या है, कृष्णा। तो उसके लिए एक नया डॉन था, ऐसा कुछ नई पहाट होगी, नया कुछ समझ आया, कृष्णा कुछ अलग व्यक्ति है, भगवान है। तो उसको इतना रुचि आ गया, आगे जाके वो सन्यासी बन गए हमारे मूवमेंट में। तो जब मन ऐसा भटकता रहता है इधर से उधर से, लेकिन किसी भी तरह से कृष्ण नाम से अगर हम जुड़ जाए, तो इंद्रिय तृप्ति से मन को निकाल के पूरे कृष्ण की सेवा में हम लगा सकते हैं। ये नाम बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि आज का जो दिन है, वैसे वैष्णव कैलेंडर में देख रहा था कुछ स्पेशल दिन है क्या, तो वहां पे मराठी वैष्णव कैलेंडर में लिखा है सावतामाळी पुण्यतिथि, संत सावतामाळी पुण्यतिथि। शायद महाराष्ट्र लोगों ने सुना रहेगा, बड़े संत है संत सावतामाळी करके। तो उनकी बहुत ही बड़ी कथा है, तो 2 मिनट में उनके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा सबके जानने के लिए कि वो 1250 के आसपास इस महाराष्ट्र में थे। सोलापुर के जिले में एक अरनी नाम का गांव आता है, पंढरपुर के बाजू में है। तो वो माळी मतलब गार्डनर थे, माळी का व्यवसाय था उनका, तो गार्डनिंग करते थे, फूल पौधे फ्रूट्स ऐसे सारे ट्रीज लगाते थे, वही उनका व्यवसाय था। तो जब ऐसा करते थे तो जब बारिश का सीजन रहता है, वो फार्मर्स लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होता है ना, उसी टाइम पे आषाढ़ी एकादशी आती है, तो कभी जा नहीं पाए पंढरपुर क्योंकि उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो उन्होंने भक्ति और अपना जो कार्य है दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से समन्वय करके हमेशा वो भगवान के दिखते थे। मतलब उनके रियलाइजेशन इतने उच्च कोटि के थे कि वो अपने अभंग में बहुत सारी चीजें लिखती है कि जैसे जब कोई सीड हम लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उससे जब पौधा आता है उसमें से उनको डिविनिटी दिखती थी कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीज तो लगा रहा हूँ, इससे जो पौधा आ रहा है वो किसी के हाथ में नहीं है। और वहां से वो विट्ठल का अनुभव करते थे अपने हर एक काम में कि अलग अलग तरह के फूल आ रहे हैं, बीज तो इस कलर का है लेकिन फूल अलग कलर के है, अलग सुगंध के है, अलग साइज के है, फ्रूट्स अलग अलग टेस्ट के है। ये देख के ना उनको हमेशा सिर्फ भगवान ही दिखते थे। तो अपने अभंगों में भी बहुत सारे ऐसे वर्णन करते हैं कि कैसे विट्ठल भगवान उनके 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 मराठी में अच्छा वर्णन आता है, उसको मैं हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ, मळ्यामध्ये विठ्ठल, उनके हर एक भाजी में विठ्ठल दिख रहा है, उनको हर एक जगह पे पानी में विठ्ठल दिख रहा है, जो जो टूल्स होते हैं फार्मिंग करने के लिए उसमें भी उनको विठ्ठल ही दिख रहा है। लेकिन कभी विठ्ठल को हमेशा लिखते हैं एक श्लोक में, अभंग में तो ऐसा लिखते हो कि नैनो योग याग तप वाचे जपे विठ्ठल, हेची आमुचे निज धन सुख संपन्न विठ्ठल। मैंने योग नहीं किया, याग नहीं किया, तप नहीं किया, सिर्फ क्या किया, वाचे जपे विठ्ठल, सिर्फ मैंने हरिनाम का नाम ले रहा उसके कारण मेरा जीवन सुख और संपन्न से भर गया हूं अने हेच आमचं निजधन आहे, यही हमारा रियल संपत्ति है। तो ऐसा उन्होंने अभंग में बहुत अच्छी तरह से वर्णन आते हैं। तो हुआ क्या, कभी जा नहीं पाए लेकिन वो हमेशा विठ्ठल के स्मरण में रहते। तो एक दिन उसी टाइम पे एक और एक संत हो गए कुर्म मेड़ा नाम के, मतलब उनको हाथ नहीं थे पैर नहीं थे लेकिन हमेशा विठ्ठल का कीर्तन सुनते रहते थे, प्रवचन सुनते रहते थे। तो उन्होंने देखा कि सब लोग आषाढ़ एकादशी के दिन जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में स्टोरी बोल रहा हूँ। तो जाते जाते उनको अभी हाथ नहीं पैर तो जाएंगे कैसे, कुछ गाड़ी कार तो नहीं है वहां पे वो दिन, तो वो रोल करते जाते थे रस्ते के ऊपर, जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा में देखते हैं ना, कुछ लोग रोल करते रहते हैं। तो वैसे वो रोल करते करते जाते थे तो जो पत्थर रहते थे उनको लगते थे, खून आता था। खून आने के बाद वहां पे जब खपली रहती थी लेकिन रुकना तो नहीं है, वापस खपली के ऊपर जहां पे पहला जख्म हुआ है वापस वहां पे पत्थर लगा तो कितना चुभता है, वो सब सहन करते वो जा रहे थे। बाकी यात्री पूछ रहे थे आप कहाँ जा रहे हो, पंढरपुर जा रहे हो, बोलते हम आपके साथ आएंगे लेकिन हमें मदद करनी इच्छा लेकिन हम नहीं रुक सकते ना, तो हमारा एकादशी तो इधर ही हो जाएगा, पहुंच ही नहीं पाएंगे हम चलते चलते। तो उसको सब छोड़ के आगे जा रहे थे, वो अकेला जा रहा था। तो एक दिन एक रिच आदमी आता है, बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, बोला एकादशी के लिए जा रहा हूँ पंढरपुर। बोला आप खाना पीना क्या क्या कर रहे हो, बोला मैं अगर खाने के लिए किसी गांव में गया तो आते आते मुझे 3-4 घंटा चला जाएगा, इसलिए मैं जो रस्ते के बाजू में मिल रहा है वही खा रहा हूँ, कंदा फूल मले या किसी ने कुछ दे दिया तो उतना ही खाता। इस व्यक्ति को बहुत करुणा आई, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं हम क्या करते हैं, अब डेली तो अगर तुम इतना डिस्टेंस जा रहे हो तो मैं यहाँ पे जाके रुकूंगा, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम वहां पे आ जाना शाम को खाना खा जाना। तो डेली वैसा दोनों, एक रिच आदमी और एक कुर्म मेला ब्राह्मण जा रहा है। तो जब एक दिन पहला था एकादशी का, बोले कि देखो अभी मुझे भी जाना है एकादशी के लिए, क्या मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ, बोला जा सकता है लेकिन मैं एक्चुअली मैंने तो तुम्हें रुकने के लिए बोला ही नहीं था, तुमने ऑलरेडी इतना मेरा सेवा किया है, मैं बहुत इंडेटेड हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, तुम आगे चले जाओ और मुठ्ठल जी को इतना ही प्रार्थना करना कि मुझे कभी हो गए तो दर्शन दे देना। तो दूसरे दिन जब रिच आदमी जाते आगे तो वो स्वयं विठ्ठल भगवान होते, वो अपने भक्त की सेवा करने के लिए आते, लेकिन वहां पे आषाढ़ी के दिन बहुत सारे भक्त आने वाले करके वो एक दिन आगे चले जाते हैं। जब सब दर्शन हो गए तो शाम के टाइम पे वो वहां पे ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, बड़े बड़े संत होते हैं, उनको पता रहता है ये जो अर्चे विग्रह है उसमें विठ्ठल भगवान स्वयं प्रेजेंट है। वहां से भगवान निकल गए, वहां पे अभी अर्चे विग्रह है लेकिन भगवान भी बाहर आ गए। तो दोनों देखने लगे भगवान जा किधर रहे, तो चंद्रभागे के किनारे के यहाँ पे वो भी बाकी लोग वहां भी कीर्तन कर रहे हैं, दो संत लोग भी उनके पीछे आते हैं भगवान के पीछे। बोले भगवान मंदिर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, हम सब लोग लाखों लोग वहां पे आए दर्शन के लिए। बोले नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है, एक भक्त मेरा बहुत रुका एक जगह पे वो आ नहीं पा रहा, उसको मैं दर्शन के लिए जा रहा, अभी आप सबने दो दर्शन ले लिया। तो नामदेव महाराज ने उन्होंने सोचा कि अगर इतना बड़ा भक्त है जिसके लिए भगवान जा रहे तो हमें भी उसका दर्शन लेना चाहिए, तो हम भी आएंगे आपके साथ। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो हम तीनों चलते जहाँ पे कुर्म मेला रहता है रस्ते के ऊपर उधर ही आने वाले थे। बीच में आने वाले भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है आप दोनों इधर ही रुको, मैं पानी पी के आता हूँ बाजू वाले घर पे। वो घर था सावता माली का, तो वहाँ पे भगवान अंदर जाते हैं और वो कुछ लीला करना चाहते थे, सावता माली से बात वरी करते भगवान दर्शन देते खुद, बोले तुमने इतना अच्छा मेरा भक्ति किया है, मैं दर्शन के लिए आया हूँ देने के लिए, लेकिन मेरे पीछे दो चोर पड़े तुम्हें कुछ तो करके मुझे छिपाना होगा, वो अभी अंदर आ ही जाएंगे। तो ये सब भाव, अभी भगवान तू तो सब चराचर में है, वो 14 लोकों में है, तुम्हें कौन कैसे छुपा सकता है। बोला अभी फिलोसॉफी थोड़ी देर बाजू में रख, मुझे कहा तो छुपा ले। तो बोलते मेरे हृदय के अंदर ही मैं छुपा सकता हूँ। तो वहाँ पे दो अलग कथा आती है, कोई बोलता है अपना खुरपा मतलब एक गार्डनिंग टूल होता है उसको लेके छाती फाड़ के जैसे हनुमान ने किया वैसे भगवान, दूसरा कथा में बोला गया है कि भगवान डायरेक्टली एंट्री मार देते बिना फाड़े, तो भगवान को छुपा लेते अपने हृदय के अंदर। ये दो संत लोग बाहर वेट करते करते अंदर आ जाते हैं, बोले यहाँ पे कहाँ भगवान को देखा क्या आपने, बोला नहीं देखा। तो ढूंढते रहते बोले कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, दोनों अपने वो भी उच्च कोटि के भक्त हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अंदर जाते हैं लेकिन अपना पूरा पीतम्बर का छोटा सा कोना रहता है ना वैसा बाहर रखते हैं इधर से, तो उनको दिखता है कि भगवान अंदर गए। अपने अगर सावतामाड़ी का पिक्चर देखा तो वहाँ पे हमेशा ऐसे विठ्ठल उनके हृदय में ऐसे छोटा सा भारत पीताम्बर छोड़ के बैठते, तो इनको पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े भक्त है। तो सावतामाड़ी ऐसे भक्त थे, फिर नामदेव महाराज वो पीताम्बर को खींचते भगवान को बाहर निकालते, फिर भगवान बोलते हैं नहीं आपको छोटा सा गर्व हुआ था इसलिए मैं वहां पे छोड़ के यहाँ पे आ गया है, ये बहुत ही मेरा बड़ा भक्त है, इसको भी मैं दर्शन देना चाहता था, इसका भी ग्लोरिफिकेशन दुनिया के सामने लाना चाहता था इसलिए मैं आ गया। तो ऐसे सावतामाड़ी बहुत ही बड़े भक्त है, उनकी आज पुण्यतिथि है। सब संतों की पालखी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर जाती है, सावतामाड़ी की नहीं जाती है क्योंकि वो खुद कभी गए नहीं, लेकिन उनके पुण्यतिथि के दिन आज के दिन पंढरपुर की विठोबा की पालखी उनके गांव में आ जाती है। अकेले संत है जहाँ पे पंढरपुर के विठोबा पालखी में बैठ के उनके गांव आते हैं अरनी गांव में। तो वो इस इंद्रिय तृप्ति और माया, ये जो विषय हमारा है आज का, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा अभंग लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि अगर किसी पौधे को पत्ते ना फूले वसंत ऋतु में तो उसमें वसंत ऋतु का दोष नहीं है, उसको आप गाली मत दो, क्योंकि वसंत ऋतु ऐसा ऋतु है जिसमें सब पेड़ों को नए पत्ते आते रहते हैं। अगर दिन में उल्लू मतलब आउल को अगर दिखाई नहीं देता है तो उसमें सूरज को दोष मत दे दो, उसमें सूरज का कुछ दोष नहीं है। अगर बारिश के सीजन में चातक का प्यास नहीं बुझता है तो उसमें बारिश को दोष मत दे दो। उसी प्रकार अगर जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो दूसरों को दोष मत दे दो या भगवान को दोष मत दे दो। ये सब विधि विहित कर्म के फल है, वो आते रहेंगे, उसको सहन करते रहो। तो ऐसा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस जीवन में जीते हुए हमें कृष्ण के हमेशा स्मरण करते हुए, और उन्होंने ये भी एक दूसरे अभंग में लिखा था कि सबसे अच्छा भगवान का दर्शन करना है ना, इनको किसी ने पूछा था पंढरपुर कभी गए नहीं, बोले भगवान के नाम में ही भगवान है, उनका बहुत ही बड़ा विश्वास था कि विठ्ठलाच्या नावामध्येच विठ्ठल है। तो हम अगर पांडुरंग या भगवान का नाम जब लेते हैं तो उसमें मुझे अनुभव हो जाता है भगवान का। तो अगर मैं जा नहीं पाता हूँ किसी कारणवश तो अलग बात है। तो इसलिए भगवान के नाम में रुचि रखना और उसमें अगर आगे जाते रहना, ये हम अगर करते रहेंगे तो बहुत ही हमें फायदा होने वाला है। तो इस संत का जो आज का पुण्यतिथि का दिवन है, मतलब डिसअपीयरेंस डे है, तो ये कथा से हम बहुत ही अच्छा सीख सकते हैं कि कैसे हम इंद्रिय तृप्ति से दूर होके कृष्ण के सेवा में और कृष्ण के नाम में रुचि रखेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे पुरंजन का अंतिम क्षण आ रहा है और यही कथा हम भरत महाराज के भी अंतिम क्षण में देख रहे हैं। उन्होंने क्या हुआ, वैसे देखा तो करुणा कुछ बुरी चीज नहीं है, करुणा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन करुणा अगर इस हिरण के प्रति जो उन्होंने दिखाई, मृग के प्रति दिखाई, उसका रूपांतर उनके लिए माया में हो गया। क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो में समझने के लिए, क्योंकि हम माया के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे माया ने झपटिया धरे, भरत महाराज को झपट करके ले लिया और उसके लिए उन्होंने यूज किया करुणा। मतलब माया कैसे भी एंट्री मार सकती है हमारे भक्ति में, जीवन में, और हमें नीचे खींच सकती है, उनका पतन हो गया उससे। तो वहां पे उनको बोलने के लिए कोई भक्त नहीं थे। तो अगर माया से बचना है तो वैष्णव संघ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन भागवत में दिया गया है कि वैष्णव संघ में भरत महाराज को किसी ने बोला था होता है भैया ये क्या कर रहे हैं ना, आप जो भी भगवान के प्रति करते थे वो सब वो मुर्गे के प्रति करने लगे थे ना। वहां पे दो हम देख सकते हैं, जैसे कि दक्ष महाराज के इसमें हम देखते हैं कि उनका पतन जो है द्वेष के कारण हो गया और भरत महाराज का पतन प्रेम के कारण हो गया, करुणा के कारण हो गया। तो ये दोनों दोष है, दोनों कारण पतो होता है। आई हेट यू, इसका उदाहरण है दक्ष महाराज, एंड आई लव यू, इसका उदाहरण है भरत महाराज। तो आई हेट यू से दक्ष महाराज का पतन हो गया है, आई लव यू से भरत महाराज का पतन हो गया है। तो दोनों से हमें सावधान रखना है, हम किसके प्रति जा रहे हैं, हमें कृष्ण के प्रति जाना है। तो माया किसी भी तरह से अंदर आ सकती है। तो हम अगर बोलेंगे वैष्णव संघ है तो वैष्णव संघ किसको बोलते हैं, उसमें अगर ये छह तत्वों का डिस्कशन हो रहा है तो उसको वैष्णव संघ बोलना चाहिए, अगर ये छह तत्वों का डिस्कशन नहीं हो रहा है तो वैष्णव संघ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दो भक्त साथ में आके कुछ तो चर्चा कर रहे हैं। कौन से छह तत्व है? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। ये जो छह तत्व, ये छह तत्वों का डिस्कशन भक्तों के बीच में होना चाहिए। भक्त कितने संख्या में साथ में आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दो ही भक्त है या हजारों भक्त है, लेकिन साथ में आके कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इश्यू में अगर रुचि रखते हैं तो उसको वैष्णव संघ नहीं बोल सकते हम। दो ही भक्त साथ में आके अगर भक्तों की या छह तत्वों के बारे में ही लीला कृष्ण तत्व भक्ति तत्व भक्तों की सेवा भगवान की सेवा या फिर भाव रस प्रेम इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तभी उसको वैष्णव संघ बोल सकते हैं। क्योंकि होता कैसा है, मन ये ऐसी चीज है जैसे मैंने बोला थोड़ा सा लपक जाता है, जैसे उसी तरह से क्या होता है कि मन के अंदर अलग अलग विचारधारा साथ में आ सकती है। भागवतम छोड़ के जो कोरोलरी विचारधाराएं हैं उसको भी हम शायद हो सकता है कि हम ज्यादा डीप में जाते रहेंगे तो मेन विचारधारा से हटके किसी दूसरी विचारधारा तक पहुंच जाएंगे, और वो योजना वो विचार वो प्लान्स हमें इस दिशा में लेके जाएंगे जहां पे हम सिर्फ कृष्ण छोड़ के या छह तत्व छोड़ के बाकी ही चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग उसको हम ऐसे वैष्णव के गार में रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर से सम पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत अलग ही दिशा में लेके जाएंगे। जैसे कि भरत महाराज को समझ में नहीं आया तो यहां से और एक सीख ले सकते हैं कि जैसे वो मृग के बारे में बार बार चिंतन कर रहे थे तो इंप्रेशन उनके मन में ऐसा पड़ा कि एंड ऑफ द लाइफ में वो सिर्फ मृग के बारे में सोच रहे थे, जबकि वो यहाँ पे पराकोटि के भक्त थे। उसी तरह हम अगर नया कुछ प्रोजेक्ट लिया, नया कुछ विचारधारा लिया और उसके बारे में बार बार चिंतन करते रहेंगे और जो मेन स्ट्रीम कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़ के थोड़ा सा हटके है तो हमारा मन के अंदर वही इंप्रेशन हो जाएगा और मृत्यु के समय में शायद हम उसी दिशा में चले जाएंगे और भरत महाराज का अगला जन्म फिर मृग का हो गया। तो माया इसी तरह से भी भक्त के जीवन में आ सकती है, डायरेक्टली पुरंजन जैसे श्री के डायरेक्टली संबंध से नहीं आएगी अभी हमारे जीवन में, लेकिन हमारे जीवन में शायद अलग तरह के ऐसे लीडरशिप में क्रैक्स इज अनदर वे माया कैन एंटर और नीचे फिर कांग्रेगेशन पूरा इफेक्ट हो सकता है या फिर अलग विचारधारा से इफेक्ट हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे, एक भक्त नया भक्त था उसके घर में गए तो उसके आल्टर पे एक लड़की का फोटो था, तो उसको पूछा ये क्या है, बोला नहीं मैं इससे बहुत प्यार करता था लेकिन जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मुझे बहुत दुख पहुंचा, तो मैं सोचने लगा मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इतना दुख क्यों हो रहा है। तो इसी अवस्था में मैं भक्तों के संग में आ गया तो मुझे सब उत्तर पता चले, इसलिए मेरी वो पथ प्रदर्शक गुरु है, इसलिए मैंने उसको अल्टर पे रखा है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये तुम्हारा भाव ठीक है लेकिन इसके लिए अल्टर पे रखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह हमारा मन हम किस विचारधारा के प्रति इतना आसक्त हो जाएगा, हम उसको जहां पे रखना चाहिए वहां पे न रखते हुए उसको मेन स्ट्रीम भक्ति में अगर लेके आएंगे तो हो सकता है कि हम अलग ही दिशा में जाएंगे। तो हमें इससे ही बचना रहेगा, यही हम आज सीख सकते हैं पुरंजन के इस आख्यान से कि माया के इस प्रभाव से बचना है तो हमेशा हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। हमें भरत महाराज के एग्जांपल के थ्रू देखा है, प्रभुपाद के दो तीन पास्ट टाइम्स के थ्रू भी देखा, अगर हम बच पाएंगे और हमेशा सेल्फ एनालिसिस करते करते मेन जो श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है जहाँ पे शुरुआत में ही कैटभ धर्म को हटा दिया गया है, वैसे हम अलग अलग धर्मों को अगर बाजू में रखे उसका उपयोग करके भक्ति के लिए, लेकिन भक्ति से हटके वहाँ पे न जाते हुए फुल स्केल उसमें न घुसते हुए अगर हम आगे जाते रहेंगे तभी हम भगवत धाम पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।